بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بلکہ درود بھیج محمد و آل محمد. انفرادی اور اجتماعی پلاننگ کے نتیجے میں انسانی کامیابی کے عوامل, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اور ادھر سے اخلاق سے زیادہ مائنڈ سائنس کے اوپر تکیہ کرتا ہے. اس بنا پر جو عنوان, جس عنوان کے تحت مجھے یہاں بلایا گیا ہے, وہ عنوان کسی بھی صورت میں میرے لیے قابل جمع نہیں ہے. اس لیے کہ درس اخلاق نہ پڑھنے سے آتا ہے نہ پڑھانے سے آتا ہے. درس اخلاق ایک تربیتی مؤلفہ ہے کہ جو علماء ربانی کے پاکیزہ نفوسی کے ذریعے سے ممکن ہے. لیکن کچھ سننے اور کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے, اس بنا پر اس عنوان کے تحت حاضر ہوتے ہیں کہ کچھ باتوں کو تذکراً اپنے لیے اور آپ کے لیے بیان کیا جائے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہ پیچھے جو دوست بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ آگے آگے آ جائیں, نہ پیچھے بیٹھنے کا کوئی. جی ایک دفعہ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. خود یہ نظم کی جانب پہلا قدم ہے کہ آپ جو ہیں وہ پہلے آگے والی سیٹس کو مکمل کریں اور ان پر تشریف فرما ہوں. سورہ والعصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, موضوع کا اعلان ہو چکا ہے. بلا تمیل ٹو دا پوائنٹ گفتگو کروں گا. بہت سارے نکات ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس ذمے کہی جا سکتی ہیں. اس سے قبل بھی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اسی آڈیٹوریم میں میں نے خطاب کیا تھا, اور بہت ساری باتیں شاید وہ نہیں ہوں جو میں کر چکا ہوں, بلکہ ایک نئے انداز سے کرنا چاہتا ہوں. کسی کو یاد ہے ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے؟ آپ میں سے شاید نہیں ہوں, شاید 2 سال پہلے کی بات ہے, آپ لوگ نہیں تھے اس زمانے میں. شاید جی آپ بہت قدیمی ہیں ماشاء اللہ. تو 3 قسم کے لوگ ہیں. قرآن نے 3 قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے. ایک ایمان و عمل نہیں رکھتے, ایمان و عمل رکھتے ہیں لیکن ناقص. اور 3رے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی رکھتے ہیں اور کامل عمل رکھتے ہیں اور کامل ایمان رکھتے ہیں. جو لوگ لکھیں گے وہ فائدے میں رہیں گے, جو لوگ حافظے کے سپرد کریں گے وہ اپنے حافظے کی تقویت کی دعا پڑھیں تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو قائم رکھے. ہمارا موضوع ہے انفرادی اور اجتماعی پلاننگ اور منصوبہ بندی کا نتیجہ انسان کی زندگی میں کیسے نکلتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ پلاننگ کیا چیز ہے, منصوبہ بندی کیا چیز ہے, جس کو فارسی میں برنامہ ریزی کہا جاتا ہے. ریز در حقیقت ریختن کا مضارے ہے, بنے مضارے ریز. ریزی جب یا کے ساتھ لگ جائے گی تو یہ مصدری معنی دیتا ہے, یعنی برنامہ ریزی, برنامے کو ڈالنا, برنامے کو بنانا, برنامے کو قابل عمل بنانا, عمل جامہ پہنانا, एक्शन में लेकर आना उसको प्लानिंग से। इसको कहते हैं बरनामा रीजी। बरनामा रीजी यानी वो प्लानिंग, वो प्लान करना, वो मंसूबाबंदी करना। मंसूबाबंदी किसे कहा जाता है? बंद कहते हैं क्लोज करने को, बंद करना, ठीक है ना। बंदी ये या लग गई इसमें, ये भी मजदूरी माने बंदी, नाकाबंदी। नाकाबंदी हो गई यानी मोर्चाबंदी हो गई, उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। मोर्चाबंदी, नाकाबंदी, ठीक है ना, मंसूबाबंदी यानी कोई चीज़ अमल में आ रही है, कुछ चीज़ों को बंद किया जा रहा है, कुछ चीज़ों को क्लोज किया जा रहा है, कुछ चीज़ों को काउंटर किया जा रहा है। बात वाजी हो रही, नहीं हो रही है जी? हो रही है। हो, बंद से है बंदी। बंद यानी क्लोज करना, रोकना, ठहराना, रुकावट ईजाद करना, किसी को आने जाने की पर पाबंदी लगाना। मंसूबा, मंसूबा कैसे कहते हैं? बाबे मफूल है मंसूबा, मंसूब मंसूबा है या नहीं है? बाबे मफूल है, इसमें मफूल है या नहीं है? माजरा चाहता हूँ, बाबे मफूल कह रहा हूँ, इसमें मफूल है। आपने कहीं कोई नई चीज़ आ गई, बाबे मफूल हो, इसमें मफूल है, मंसूब मंसूबा। मंसूब किसे कहा जाता है? जिसे नस्ब किया जाए, जिसे गाढ़ा जाए, जिसे करार दिया जाए, जिसे मुकर्रर किया जाए, जिसे मुहक्कक किया जाए। जैसे कहते हैं मैं मसलन जामतुल मुस्तफ़ा के पाकिस्तान के जो मसूल हैं, वो कहें जनाब मैं फिदा साहब को यहाँ पे मंसूब करता हूँ। ये जैसे रहकर मतलब कहते हैं मैं फलां मसलन कासिम सुलेमानी शेख की जगह फला साहब को मंसूब करता हूँ, नस्ब करता हूँ, यानी उनको मुकर्रर कर रहा हूँ कि वो याद है। मंसूबा यानी दर हकीकत जिसे करार दिया जाए, यानी कोई चीज़ ऐसी जो करार दी जाए। कहाँ पे करार दी जाए? मंसूबा बंदी यानी वो चीज़ जो मंसूब की जाए फिर उसकी बंदी भी की जाए। क्या मतलब? देखें मैं हमेशा से ताकीद करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वो इन इस्तलाहों को खोलने की कोशिश करें, खुसूसन कुरान इस्तलाह। एक मुफक्किर गुजरे हैं ईरान के, आयतुल्लाह हायरी सफाई, उन्होंने इन अल्फाज को बड़े खूबसूरत अंदाज से बोला। इससे पहले मैंने किसी को नहीं देखा और ना उनके बाद ये रविश मैंने देखी। उनकी कुछ किताबें ऐसी हैं, एक आद का तर्जुमा भी मैंने किया, सूरह वाल असर की तफसीर, एक अदबी लिहाज से उन्होंने तफसीर की है और वो छप भी चुकी है। इंतहा खूबसूरत तफसीर है, यानी एक अदबी लिहाज से उन्होंने कुरान करीम को मुख्तलिफ हवालों से क्या किया है, उसकी तफसीर की है। और बहुत ही सलीस अंदाज से, बहुत यानी कहते हैं उनको इंसानी एहसास को छूने वाली तफसीर के लिहाज से। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ उर्दू लिखने का रिवाज बहुत कम है, जबकि अहल सुन्नत के यहाँ जो तफासिर लिखी गई हैं उर्दू ज़बान में उनकी तादाद भी ज़्यादा है और उर्दू अदब पे उनका अबूर भी ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो उर्दू अदब जो है वो बहुत नाकिस रहा है, खुसन उलमा में। यही वजह है कि ना हमारे यहाँ शोरा पैदा हो सके, ना हमारी नकाद पैदा हो सके और ना ही हमारी अदीब पैदा हो सके। उर्दू अदब जो है ना वो चूँकि एक मुश्तरक अदब है तमाम अकवाम मिलल पाकिस्तान का, इस बना पर ज़रूरत इस बात की कि तुल्लाब को उर्दू अदब पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। आपकी जो महली ज़बान है, मादरी ज़बान है, वो अपनी जगह उस पर होनी चाहिए, लेकिन उर्दू वो कॉमन फैक्टर और लैंग्वेज है कि जिसके ज़रिए से आप जो है वो पूरे आलम इस्लाम में मौजूद, यानी वो अफराद जो उर्दू नहीं भी बोलते लेकिन उर्दू समझते हैं और उर्दू को रोमन में पढ़कर नौहे पढ़ते हैं, मनकवत पढ़ते हैं। ख़ुद ये एक बहुत बड़ा तफसीली मौजू है कि उर्दू ज़बान ने इस्लाम की और अदादारी की क्या खिदमत की है। बहरहाल तो ये तफासिर हमारे यहाँ बहुत कम लिखी गई हैं, जबकि हमें उलमाए दियोबंद में या अहले सुन्नत की जानिब से बहुत सारी इल्मी खिदमत हमें नज़र आती हैं। मैं उनका मैार अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि किस सतह किस मैार के, बहरहाल उन्होंने खिदमत की है अपने तई, उन्होंने खिदमत की है इस चीज़ की। इस बिना पर लाजम व ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को मद्दनज़र रखें। तो उनकी उस तफसीर में अर्ज कर रहा था कि उन्होंने वाजह शनासी अल्फाज को खोला है, मतलब मुस्लिम, मोमिन, काफिर, मुनाफिक, ये इस्तलाहें कुरानी, इनको खोला है बहुत प्यारे अंदाज से खोला है। मजलूम, जालिम, सितंगर, ताऊत, इस कस्म के अल्फाज, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खोला है। मुस्लिम का क्या माना है, मोमिन का क्या माना है, एक मोमेंट का माना है कि हम कहते हैं फ़लाँ साहब मोमिन है, लेकिन हकीकता मोमिन क्या है उसकी, यानी लुगवी बहस की, उसकी सलाही बहस की बहुत ही खूबसूरत, लेकिन बहुत खुश्क नहीं, बहुत ही मलमूस, बहुत ही प्यारी, बहुत ही नर्म, बहुत ही लतीफ़ बहस की है। यानी वाकई मुझे ख़ुद मज़ा आया उनकी एक किताब तर्जुमा करके सूरह वाला रुश्त के नाम से उन्होंने उसकी तफसीर की है। खैर, तो मंसूबा बंदी, यानी मंसूबा बंदी वो चीज़ कि जिससे आप नस्ब करना चाहें, कहाँ नस्ब करेंगे आप, ये मंसूबा बंदी का सबसे पहला मरहला कहाँ है। मंसूबा बंदी का सबसे पहला मरहला जो बज़ाहिर होना चाहिए उसके तीन स्टेजेस हैं। एक आपका पेपर, आपका मोबाइल, आपकी कॉपी, आपका रजिस्टर जहाँ पे आप उसे लिख सकें। दूसरा आपका जहन और तीसरा आपका अमल। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे इसको नस्ब किया जाता है। ये आपके पहले नियत और फिक्र के मरहले में, फिर उसके बाद कागज़ में, उसके बाद अमल में, यानी आगे पीछे हो सकता है, इसको किया जा सकता है। इस बिना पर मंसूबा बंदी, हमारे जहन में जो चीज़ आती है मंसूबा बंदी से, वो है अपने आप को बिजी रखना। बहुत से नौजवानों ने जब रब्ता किया कि जनाब हम चाहते हैं कि गुनाहों से बचें, तो मैंने कहा उसमें अपने आप को बिजी रखें, खाली वक्त ना छोड़ें अपने आप के लिए। जहाँ आपने खाली वक्त छोड़ा वो शैतान का कारखाना बन जाता, खाली जहन शैतान का कारखाना, मशहूर मकूला है। अब वो क्या करते हैं कि दिन और रात अपना को बिजी रखते हैं, लेकिन इस बिजी रखने में, मसरूफ रखने में वो खुद फरामोशी का सबब बन जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अन्फुसुहुम, उन लोगों की मानी नहीं हो जाना कि जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपना आप बुला दिया। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, देखो इस मसरूफ रहने में अल्लाह को फरामोश ना करना। अल्लाह फरामोशी खुद ही फरामोशी या खुद फरामोशी का सबब बनती है। हम लोग की सबसे बड़ी गलती ये होती है, और खुसूसन तालिबे इल्मों में आप देखेंगे गुज़िश्ता एक हफ़्ते दो हफ्ते में आप बहुत मसरूफ़ रहे, बहुत सारे काम आप मुझे बयान कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपने अपने आप को कितना वक्त दिया। आप कहेंगे मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने नमाज़ पढ़ी, नहीं, ये अपने आप को वक्त देना नहीं है। अपने आप को वक्त देना यानी अपने आप के साथ खलवत और तन्हाई में बैठना, अपने बारे में सोचना, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव हैबिट्स और अपनी सलाहियतों और अपनी सिफात के बारे में सोचना, यह है अपने आप को वक्त देना। कहीं आप फरामोश ना हो रहे हो, आप अपने आप को भुला ना रहे हो। और होता यही है तालिब इल्मों की ज़िंदगी में, हम अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई में और रिसर्च में और मुबाहिसे में इतना लग जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा नुक्स है, ऐब है। तो बरनामा रिजी से या मनसूबा बंदी प्लानिंग समझो, तो इंसान प्लान करे पूरे दिन के लिए और पूरे हफ्ते के लिए, उसके बाद जो है कोई लम्हा ना छोड़े, नहीं, खुद फरामोशी ना हो। खुद फरामोशी अगर हो गई तो उस प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या है इसका। इसका मकसद यह है कि महारत हासिल करें। महार और लगाम जो है हमारी अपने हाथों में होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, अपने ऊपर तसल्लुत होना चाहिए, अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी पर, अपनी फ़िक्र पर, अपने इरादों पर, अपने फ़ैसलों पर, अपने इकदामात पर तसल्लुत होना चाहिए। अगर इंसान का अपने ऊपर तसल्लुत नहीं है, अगर इंसान का अपने ऊपर बोलने पे तसल्लुत नहीं है, तो ऐसा इंसान इंसान कहलाने के हकदार नहीं है। हो, तीसरा नुक्ता जो अहम तरीन नुक्ता है, जिसको मौलाए कायनात ने फरमाया उसी कुम तक़वल्लाह व नज़्म अमरकुम, ये सुना हुआ है और तकरीबन मुख्तलिफ मौाक़े पर हम सुनते हैं, लेकिन इंतहाई गैर मुनज़्ज़म ज़िंदगी होती है हमारी। यानी कहीं ना कहीं आकर हम इस कौल को पामाल कर रहे होते हैं, उसी कुम तक़वल्लाह व नज़्म अमरकुम, यानी अल्लाह का तकवा इख्तियार करने का लाजमी नतीजा क्या है, नज़्म अमरकुम, यानी तुम्हारे उमूर मुनज़्ज़म हों, प्लानिंग हो, मंसूबा बंदी हो उनके लिए। खूब, बात हो रही है मनसूबा बंदी पर, पहले उसकी तकमील कर दूँ फिर आता हूँ। मनसूबा बंदी हमने कहते हैं मनसूब मुकर्रर करना है, नस्ब करना है, आंखों के सामने फिगर के सामने कागज़ पर लिखना है। बंदी क्या है, यानी कुछ चीज़ों को आपने रोकना है, यानी मनसूबा बनने के बाद आपने कुछ चीज़ों की पाबंदी लगानी अपने ऊपर कि ये करना है इसकी पाबंदी या नहीं करना है इसकी पाबंदी, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, कि जनाब मैंने ये करना है, ये करना इन्हें पाबंद कर रहे हैं, नहीं करना जब भी पाबंद कर रहे हैं, दोनों सूरतों में। तब मनसूबाबंदी वाजे हो गई, मनसूबाबंदी क्यों करना चाहते हैं, प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं, वो मैंने बता दिया कि अपने ऊपर तसल्लुत हासिल करना है, अपनी ज़िंदगी, अपनी फ़िक्र, अपने इरादे, अपने इकदाम और अपने फैसलों पर। इसलिए कि ये कॉल मैंने सुना था इमाम मलिक आज से कोई 15 साल 8-12 साल पहले, लेकिन उसका मुझे सोर्स नहीं मिल सका, क्योंकि मैंने फ़ारसी में पढ़ा था, उसको सर्च नहीं कर सका। इंसान की सोच जो है वो उसकी फ़िक्र बनाती है, और फ़िक्र जो है वो नीयत बनाती है, और नीयत जो है वो नज़रिया बनाता है, और नज़रिया जो है वो आपकी सोच और आपके फिक्र को कंट्रोल करता है, और यही नज़रिया आपके फैसले की बुनियाद बनता है, और यही फैसले अमल के मैदान में आपका इकदाम बनते हैं, और यही इकदाम और यही अमल जो है वो नतीजे की सूरत में आपके सामने आता है। बस मनसूबाबंदी या प्लानिंग दर हकीकत अपनी सोच, फिक्र, नीयत, नज़रिया, फैसला, अमल व इकदाम को कंट्रोल करना और उसको सही तौर पर अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल दरामद होना है। चौथा नुक्ता क्या है, ज़िंदगी गुजारने के तीन तरीके या तीन मेथड्स मुतसव्विर हैं। पहला ये कि आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी की रविश का तयन करें कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, समझ रहे हैं कैसे गुजारनी, पहली रविश। दूसरी रविश क्या है, जैसे होता है ना आप साहिब समझ रहे हो कि हाथ बांध के खड़े हो गए, किसी ऊंची पहाड़ी पे गए हाथ बांध के खड़े हो, बड़ा अच्छा मंजर है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। दूसरी रविश के हाथ बांध के खड़े हो जाओ, देखें बारात कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, सही। और तीसरी क्या है, और तीसरी रविश यह है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे मबहूत और हैरान हो जाए, अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा वैसा हो रहा है, अच्छा यूँ हो गया, अच्छा हो। आपका क्या काम है, कुछ नहीं, आप फिर अपने तासरात से कर रहे हैं। आपकी नज़र में सबसे बेहतर रविश कौन सी है, खुद तयन करना, हाथ पे हाथ बांध कर रख कर सिर्फ देखना और नज़ारा करना, या ये कि नतज से हैरान और मबहूत हो जाना। यकीनन हर इंसान कहेगा कि अपने यूँ कहूँ कि सिंध का तयन खुद करना है। और ये प्लानिंग जो है ना, ये आपको रोज़ाना बताई जा रही है, और रोज़ाना एक दुआ आप पढ़ रहे हैं जिसमें आपको एक प्लानिंग करने का दर्स दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ दुआओं में बहुत सारे ऐसे नुकात हैं कि जो हम तवज्जो नहीं करते। कोई बता सकते कौन सी दुआ जो आप रोज़ाना पढ़ते हैं जी, तो ऐसे में कौन सा जुमला है, अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु लहू फी सबीहत यौमी हादा व मा इश्तु मिन अय्यामी, ये है देखिए, ये है अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु, तजदीद कर रहा हूँ, जदीद कर रहा हूँ, इसको पुराना होने नहीं दे रहा, यानी हर लम्हा मैं इस फिक्र के साथ उजद्दिदु, उजद्दिदु यानी आना, उजद्दिदु मैं तजदीद कर रहा हूँ, तजदीद बायत कहते हैं ना, यानी दोबारा से बायत करने का आज़्म। इन्नी उजद्दिदु लहू इन्नी लि साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम फी सबीहति यौमी हादा, आज की सुबह के वक्त फजर के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, तजदीद कर रहा हूँ। वमा इश्तु मिन अय्यामी, और जब तक मैं इस ज़िंदगी को जीता रहूँगा, हर दिन हर सुबह यही तजदीद करता रहूंगा। ये सुबह के वक्त क्यों कहा है? क्या इमाम ज़माने से रात सिर्फ सुबह के वक्त है? जैसे जोहर की नमाज होती है, जोहर के वक्त पढ़ लें। जब खुदा से रबता है तो खुदा से रबता फजर में भी है, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, ईशा में भी है। तो फिर ये खास तौर पे क्यों कहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु लहू फी सबीहति यौमी हाज़ा व मा इश्तु मिन अय्यामी, आज के दिन और हमेशा हर दिन मेरा जो है वो इस प्लानिंग के साथ होगा। उसकी वजह यह है कि तुम जिस जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हो उसमें तुम्हें जिंदगी फ्लो ऑफ टाइम का नाम है। अगर मैं टाइम की यहाँ पर डेफिनेशन शुरू करूँ फलसफी लिहाज से और इस तरह ऐसे, तो हम बहुत अपनी गुफ्तगू से दूर हो जाएंगे, लेकिन इनका इंटरेस्टिंग टॉपिक है टाइम का, कि टाइम क्या चीज़ है, फलसफे में क्या बयान किया गया और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। फ्लो ऑफ सेकेंड्स का नाम या मिनी सेकेंड्स का नाम टाइम है। टाइम की जो कमतरीन तारीफ फलसफे में की गई है, अल आन, ये जो मैंने ये कहा है, ये कि ये लिखने के इब्तदाई डॉट जो मैं कलम रखता हूं, मैं कहूंगा ये के नीचे नीचे ये कहते हैं ना, ये आप लोग दिस, आपने टी के ऊपर जो डंडी मारी टी, उसके नीचे एक टी बनाई, एक जो है वो जी ऐसे करके टी बनाई है ना, ये जो आपने ये जो लाइन खींची है टी बनाने के लिए, ये जो आपने पेन रखा है ना, और पेन जैसे ही टच हुआ है, बल्कि इस टच होने से पहले जो टाइम कैलकुलेट हुआ है, इसको टाइम कहा जाता है। ये लिखने से पहले दो नुक्ते लगाएं, ये का जो आप ये शोशा बना रहे हैं ना, ये शोशा बनाइए ये का, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब मैं आपकी तरफ लिखूं तो आपको सीधा नजर आ रहा है, मैं लिख रहा हूं तो आपको उल्टा नजर आ रहा है, ये करके ये और दो नुक्ते, ये जो आपने ये पेन रखने के लिए अभी सोचा है ना, ये जो टाइम निकला है इसको टाइम कहा जाता है। और खत मुमतद है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है कि जो मुसलसल जारी और सारी है। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इरफानी भी और इस्तलाही भी और फिर लुगवी भी और फिर फलसफे भी, लेकिन मैं उसमें बारीक होना नहीं चाहता, सिर्फ बता रहा हूँ टाइम फ्लो ऑफ सेकेंड्स का नाम या फ्लो ऑफ टाइम का नाम टाइम है, बल्कि न्यू को बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सुबह के वक्त क्यों कहा, अल्लाहुम्म सबियत यौम हाज़ा, यानी सुबह के वक्त प्लान करो कि तुम्हें अपना दिन कैसे गुजारना है। और इसलिए वजह इसीलिए कहा गया है कि सुबह जब उठें तो कुछ कर, एक छोटी सी डायरी, मुझे अच्छी तरह याद है, एक हमारा फ्रांस का दोस्त था, उसने एक छोटी सा जो है दिन भर के शेड्यूल प्रिंट करके हमें दे दिए था, पूरे हफ्ते के 7 पर्चे हमारे पास होते थे, वो शायद इससे भी शायद ये साइज था उसका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये इससे भी थोड़ा सा छोटा साइज था, वो आराम से जेब में आ जाता था, नज़र भी नहीं आता था। थिंग्स टू डू, आपने करना क्या है इसके लिए, 10-12 अहम तरीन काम। एक ज़माने में जब शायद 2 साल पहले की बात है, उसमें मैंने पूरा कहा था कि जो लोग कामयाब होना चाहते हैं ना, वो पूरे 24 घंटे का टाइम टेबल बनाए तो वो कामयाब होंगे। यानी 10 मिनट अगर आपके पास है ना, 10 मिनट, तो 10 मिनट का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, 10 मिनट का आपने क्या किया, तब जाके आप जो है वही मैं हदीस बयान करूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि हदीस में किस तरीके से इसको बयान किया गया है। तो वो जेब में आ जाता था थिंग्स टू डू, उसमें आप लिखते थे 10-12-15 काम होते थे, ज़्यादा नहीं। करना क्या है आपने, कहीं जाना है आपने, आप देखें आज दिन भर दर्स के अलावा आपने क्या करना है, अहम तरीन काम लिखें, मुझे फ़लाँ के पास जाना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे फ़लाँ शॉपिंग करनी है, मुझे मिलने जाना है, मुझे मजलिस में जाना है, लिखें और उसको अहमियत के एतबार से लिखें, या टाइम के एतबार से लिखें कि पहले घंटे में कहा, 5वें घंटे कहा, 6ठे घंटे में कहा, 6 बजे कहा, 8 बजे कहा, 9 बजे कहा, या अहमियत के एतबार से लिखें कि मुझे मसलन फला दोस्त के पास जाना, आने जाने का वक्त इतना है, इतनी देर मुझे बैठना है, ये मुशख्खस होना चाहिए। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो आप कामयाब तरीन इंसान हैं कि आपने अपने टाइम को जो है वो कैद कर लिया है। और अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए ना, तो आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा। आप करके दिन मामूलन छुट्टी वाला दिन जो है, हम कहते हैं छुट्टी वाले दिन आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, आराम से नाश्ता होगा, एक आराम है ना, ये क्या है, ये फंदे इल्म है, इन्हें कत्ल कर दिया आपको उसने। मुझे नहीं याद कि मेरा कोई छुट्टी वाला दिन जो है वो इस तरह आराम से गुजरा हो। शायद छुट्टी वाले दिन मेरे सबसे ज्यादा मसरूफ दिन होता है। बहरहाल तो ये जो सुबह का है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दुल्लाहु फी सबीहि यौमि हाज़ा, इन्हें आपको प्रैक्टिस करा जा रही है खुदा के बंदो, प्लानिंग करो। ये सिर्फ इमाम ज़माना कह रही नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दुल्लाहु फी सबीहि यौमि हाज़ा व बईतु बिहि, ये वो एक मौलाना थे ना, वो नमाज पढ़ बिस्मिल्लाह अल्लाह उनसे भी नमाज पढ़ा होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, कम से कम इंसान इमामा जमाने से तो इश्क से बातें करे ना। किसी की मंगनी होती है और फोन आ जाए हैं, तो आपका तो ईमान की दर हकीकत रबता है इमाम ज़माने से, इश्क का रबता है इमाम ज़माने से। तो कम से कम दुआ अहद में तो चाको चौमिल नजर आए ना। वो बगौल आगा कराची के वो जो दुआ रजब है ना, या जलम ने बताल हरम शहीद तला दाढ़ी को पकड़ कर, तो एक शख्स उसकी दाढ़ी नहीं थी, उसको कुछ समझ में नहीं आया, बार बार वाला बैठे तो दाढ़ी की दाढ़ी पकड़ के नहीं करने लगा। एक तालिबे जो है वो जब वो हाथ मारते ना अलाजल अलाजल या मौला या साहब जमान, तो अपने बराबर वाले के हाथ पर जोर जोर से टांग पर मार रहा है जोर जोर से। उसने कहा भाई तू अपने आप को पीट मुझे क्यों पीट रहा है। तो ये प्लानिंग करना है, ये आपको मश्क कराई जा रही है कि आप रोजाना का काम लिखें, 10 काम 12 काम लिखें आप। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया ना, आप देखेंगे कि आपके वक्त बरकत आएगी। अक्सर तालबिल सर वो नहीं दें, आगा वो नहीं दें, उस्ताद बहुत हो गई, रिसर्च नहीं, तहकीक नहीं, आवाशगरी कह रहे हैं, बस 5 सफ़े बहुत हैं, ये सर इसको इसको हम कर लेंगे। आप यकीन करें कि जितना आप अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे, आपके टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती रहेगी, गुंजाइश बढ़ती रहेगी, और जितना गैर मुनज़्ज़म रहेंगे उतना ही बेहंग ज़िंदगी गुजारेंगे हम। उसकी वजह मिसाल ये स्टोर है, यहाँ पे आइए अंदर, डायरी अंदर, किताब अंदर, कपड़ा अंदर, फेंक दिया। अब क्या है, सुबह देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नहीं। लेकिन अगर क्या होता, हर चीज तरतीब से होती ना, कैपेसिटी भी बहुत होती, ढूंढने में बहुत आसानी होती। हाँ, अपनी जिंदगी साथ क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कैपेसिटी भी पूर हो रही है, फुल हो रही है, और फिर ढूंढने भी परेशानी हो रही है, ये कर रहे हैं हम अपने आप के साथ। तो आज कर रहा था कि ये हमें प्रैक्टिस कराई जा रही है। दो चीजें बहुत कीमती हैं इंसान के पास, एक टाइम और एक एनर्जी। आओ दोनों स्पेंड कर रहे हैं, दोनों खर्च कर रहे हैं आप, और बाज़ोकात तो इंसान टाइम भी दे रहा होता है। बाज़ोकात होता है ना, आपको वक्त मिला कपड़े धोने का, आपने मशीन मशीन में डाल दिए, कपड़े निकाल के देखे अभी इसका तो कलर ही नहीं मैला है, इसके धब्बे से, फिर दोबारा से पहली दफ़ा क्यों नहीं किया, अमल से पहले क्यों नहीं सोचा था कि इसमें वॉशिंग पाउडर डालना है, या इसको सही तरह धोना है, या इसकी सही केयर करनी है। टाइम भी दे रहे, एनर्जी भी दे रहे, और ये इंतहाई कीमती तरीन चीज़ है कि जो हर इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत तसव्वुर की जाती है। और ये और एनर्जी जो है, ये आप थिंक की एनर्जी दे रहे हैं सोचने की, या आप एक्शन और अमल की एनर्जी दे रहे हैं, ये दोनों आप मुसलसल दे रहे हैं। टाइम आपसे निकला चला, यानी भागा चला जा रहा है। असल टाइम को रोकना मुमकिन नहीं है कि आप टाइम को रोक दें, पकड़ लें। जहाज जा रहा हो कि आप उसे पकड़ सकते हैं यहां से, नहीं। ट्रेन जा रही है, पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते, उसे निकलना है। फ्लो ऑफ टाइम जो है ना वो मुसलसल है। आपने क्या काम करना है, उसको जिहत देनी है, सिर्फ देनी है। कोई कीमती पानी गिर जाता है ना तो आप कहते चलो पानी गिर गया, चाय गिरने लगती है थोड़ी कीमती चीज़ है ना तो आप क्या कहते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से कप को बचा लें, जो थोड़ी बहुत चाय बची है, दूध बचा है, शरबत बचा है, उसको बचा लें, पूरा ना गिरे। ठीक, अगर वो गिर भी जाए और काबिले इस्तेफादा हो, पाक जाए, गिरा हो तो आप उसको जमा भी कर लेते हैं, लेकिन पानी वो गिर जाए उसको कोई आपको परवाह नहीं होती। बकौल आप कह रहा थी कि आपके मिसाल के तौर पर चश्मे पे कोई धब्बा लग जाए तो फौरन क्या करेंगे, चश्मा उतारेंगे। खौफ क्यों, चश्मा रोजाना पहनते हैं आप। कपड़े पे चाय गिर जाए, धब्बा लग जाए, जाके जल्दी पानी धो लेंगे, अच्छा ठीक है जब ड्राई क्लीन दे देंगे या जब खुद धोएंगे धो लेंगे। कालीन पे चाय गिर जाए आपका रिएक्शन अलग होगा, आप कहेंगे ठीक है अभी साफ कर दो टिश्यू पेपर से, जब सालाना धुलाई होगी जब जाके इसको धुलवा लेंगे। कालीन के लिए अलग आपका अमल है, कपड़े के लिए अलग है, चश्मे के लिए अलग है, क्यों, तीनों चीजें आपके इस्तेमाल में है, ये आपकी सोच की अक्कासी कर रही है। और जिस तरह हम इस चश्मे के लिए हसास है, मैं फौरन चश्मे को साफ करूं तो चश्मे से मेरे 24 घंटे क्या वास्ता है। एक साहब डॉक्टर के पास आए, कहने लगे कि डॉक्टर साहब मुझे ख्वाब नजर नहीं आते, धुंधले नजर आते हैं। तो डॉक्टर ने कहा चश्मा लगा के सोया करो, कौन चश्मे का इतना तो ख्वाब नजर नहीं आते, ये तो अतराए मदद है, लेकिन ख्वाब के लिए चश्मा जरूरी नहीं होता है। जो अंधे भी होते हैं ना वो भी ख्वाब देखते हैं, मजे की बात तो ये है। तो अर्थ कर रहा था कि टाइम और एनर्जी आप दे रहे हैं, लिहाजा अगर इसको आप जिहद दे सकते हैं, बचा सकते हैं, ये काम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाइए, कुछ अहादीस मैं बयान कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई 5-6 नुकात मैंने जिक्र किए, मिल के दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गैर महसूस तरीके से टाइम गुजर रहा है, आप सो रहे हैं टाइम गुजर रहा है, आप जाग रहे हैं टाइम गुजर रहा है, आप लेक्चर में जबरदस्ती बैठे हैं टाइम गुजर रहा है, आप दिल दे के बैठे हैं टाइम गुजर रहा है, आप रो रहे हैं टाइम गुजर रहा है, आप खुश हो रहे हैं टाइम, टाइम नहीं रुकने वाला। गैर महसूस, गैर महसूस को क्या कहेंगे इंग्लिश में, क्या कहेंगे, नॉन फीलिंग, नहीं अभी जहन में नहीं आ रहा है। अच्छा एक चीज, दूसरा नुक्ता क्या है, काबिले बरगश्त नहीं है आपकी उम्र और आपका जमाना, लौट के आने वाला नहीं। तीन, काबिले मुआवजा नहीं है उसका एवज, उसका नेमल बदल, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कहेंगे जनाब मैं टाइम देके कुछ और ले लेता हूं, नहीं, सबसे कीमती तरीन चीज इस जमाने में टाइम है। सबसे कीमती तरीन चीज जो वाइट गोल्ड से भी ज्यादा जो है वो कीमती है, वो क्या है, यूरेनियम से भी ज्यादा कीमती है, वो क्या, टाइम है, नाकाबिले मुआवजा है, एवज और बदला नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह फरमाते इन्नल उम्र महदूदुन लन यतजावज अहद मा कद्दर लह, फरमाते हैं जो कुछ भी तुम्हारी मुकद्दर किया गया है उससे क्या है, यानी कोई चीज जो है उसकी नेमल बदल नहीं करार पा सकती, इसलिए कि उम्र जिंदगी महदूद है। और फिर वो जुमला जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, कौन अला उम्रिक अशह मिनक अला दिरहमिक व दीनारिक, अपनी उम्र के बारे में, अपनी जिंदगी के गुजरने वाले लम्हात के बारे में अपने दिरहम व दीनार से ज्यादा जो है हरीस बनो। इंसान कोई दोस्त मांगे ना यार दादा 20 रुपये 50 रुपये देना तो गिन के 40 रुपये देते हैं, 1, 2, 3, 4 यूं यूं करके देखते हैं यार एक ही जा रहा है दो जा रहा है। इंसान कितना बहुत एहतियात से खर्च करता है, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं ऐसे अपनी उम्र के लम्हात के बारे में सोचो ये कहाँ खर्च कर रहे हो। और फिर एक और इंतहा खूबसूरत हदीस है, एहज़रू वया अल अमारी فيما لا يبقى لكم ففائتها, डरो अपनी उम्र को जाया करने से, उस चीज में कि जब तुम्हारी फौत होने वाली चीजों में से कोई चीज नहीं बचेगी, कोई चीज वापस नहीं आ सकती, वापस नहीं आ सकती, गया गया। احذر ضياع الاعمار, अब जो चीजें उम्र को फना कर रही है, बर्बाद कर रही हैं, वो चौथा नुकता क्या है, हर काम अपने वक्त पर हो, हर काम अपने वक्त पर, टाइम और एनर्जी को मैंने कहा, अल امور مرهونه باوقاتها, امور مرهون ہے اپنے اوقات کے, यानी उमूर को अगर उनके वक्त पे अंजाम दिए रिजल्ट देंगे, उमूर अगर वक्त पे अंजाम न दिया जाए रिजल्ट नहीं देंगे। उसकी मैंने मिसाल एक दी थी, पता नहीं आप लोग थे कोई और था, लेकिन शायद इसी सेमिनार में कहीं और या क्लास में दी हो, लॉन्ग जंप देखी है आपने, लॉन्ग जंप करने वाला जो है वो मसलन ये लॉन्ग जंप है, यहाँ से उसकी जंप शुरू होगी, वो यहाँ से भागता हुआ आएगा, उसके स्टेप्स जो है ना वो गिने चुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, और छठे स्टेप में जो है उसने अपने आप को उछालना है, और जितना वो उछाल सकता है इसके बाद वो लॉन्ग जंप करेगा। ये जिमनास्टिक करने वाला जब वो दौड़ के आता है, वो जब हाथ रखने के लिए अपने आप को उछालता है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस को शो करता है। या वो क्रिकेटर जो अपने स्टार्टिंग मसलन ये विकेट है और यहाँ से विकेट छोड़ रही है, एम्पायर यहाँ खड़ा है, आगे बैट्समैन खड़ा है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे उसने वो निशान डाला हुआ है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो थोड़ा सा और जी जो भी कहते होंगे ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा और आगे जाएगा और वहां से हल्के हल्के रन अप करना शुरू करता है। जब वो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे उसके स्टेप गिने चुने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एम्पायर से गुजरा और बॉल करा, उसके इन स्टेप्स में कोई गड़बड़ नहीं होती। कभी होता है ना तो वो एम्पायर क्या करता है, डेड बॉल या क्या कहते हैं उसको, ये नहीं कोई बॉल, कोई तसव्वुर नहीं किया जाता उसको, या बैट्समैन हट जाए या बॉलर है वो हट जाए या अपना स्टेप्स भूल जाए। कहने के हर काम अपने वक्त पर नतीजा देता है, न जल्दबाजी न दे, अल उमूरु मरहूनतुन बेअवकात है। यह फरमाए कि अगर उमूर को उनके कामों पे अंजाम न दो, रसूलल्लाह फरमाते हैं, ये इमाम अली की हदीस थी, अल उमूर मरहूना, तो रसूलल्लाह के इज़ाअतुल फुरसा गुस्सा, फुरसत के लम्हात को जाया कर देना इंसान के गम और गुस्से का सबब बनता है। वो एक शेर था जी, फुर्सत के लम्हात को, ये बात याद रखिए जो मैंने शुरू में बात कही कि आप मसरूफ रहें लेकिन अपने आप को खुद फरामोशी का सबूत मत करें। एक और चीज़ जो आपकी मसरूफ ज़िंदगी में होनी चाहिए वो है फुर्सत के लम्हात। फुर्सत के लम्हात ज़रूर रखें अपने लिए, एक फ्री टाइम ज़रूर रखें, फ्री टाइम ज़रूर रखें। एक इंतहाई खूबसूरत शेर मुझे पढ़ने को मिला कि मसलहत आनस के दर एक सौती कुवती की रन जू राहती, एक छोटी सी फुर्सत टाइम पीरियड आपको मिले फुर्सत का, तो कहते हैं मसलहत आनस के दर एक सौती कुवती की रन जू व राहती, उसमें आप बहुत एनर्जी ले सकते हैं। हो उसके बाद कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, फरमाते हैं रसूलुल्लाह इन्ना उम्रका महरु सआदतिक इन अनफ़ज़तहु फी ताअति रब्बिक, औरत का महर होता है ना, मर्द का भी महर होता है। रसूलुल्लाह फरमा रहे मर्द का महर जो है ना वो उसकी उम्र है, उसका टाइम है। इन्ना उम्रका महरु सआदतिक, तुम्हारी सआदत खुशबख्ती का महर तुम्हारी उम्र और तुम्हारा टाइम है। अगर इन 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 का यानी इन इन शर्ती, अगर 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 इफ यू डू दिस, अगर तुमने ये काम किया तो तुम सआदतमंद हो, वरना यही महर तुम्हें ले डूबेगा। वो क्या, इन अनफ़ज़तहु फी ताअति रब्बिक, अगर तुमने अपने परवरदिगार की इताअत में से खर्च किया
तो तुम कामयाब हो। एक हदीस हमारे उस्ताद मरहूम मौलाना आवाज़ जाफर साहब ने सुनाई थी इन मौला अली की, इन अवकात का आयजा उम्र फला तुमरत इल्ला फी मतुन जिग्या, वो है घड़ी है कहाँ है, नहीं घड़ी नहीं है बड़ी वाली नहीं है, खैर 8:20 पे दिया आपने वैसे ही मुझे, ये जो सुई गुजर रही है ना टक 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 गुजर रही है ना, इमाम मालिक इन ना औकात का अजज़ा उम्र, ये वक्त जो गुजर रहा है ना ये तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, फला तुफनित इल्ला फीमा तुंजी, इन्हें ऐसे कामों में खर्च करो जो तुम्हारी निजात का सबब हो। इसको कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट। हो अब आइए कि ज़िंदगी को कैसे मुनज़्ज़म करें इनफरादी इज्तिमाई सतह पर। मैं बहुत ज़्यादा इसमें अभी तफरीक नहीं कर रहा हूँ कि इनफरादी क्या इज्तिमाई क्या, मैं मजमूई गुफ्तगू कर रहा हूँ, यानी कुछ फ़वाद भी बता रहा हूँ साथ साथ, और वही फ़वाद जो हैं वो आपकी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने में मदद कर सकते हैं, वो फैक्टर्स वो अनासर। हो सबसे पहला फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि मुनज़्ज़म ज़िंदगी आपको जेहद देगी। आप देखेंगे बहुत सारे लोग सुबह उठने के बाद 10 मिनट तक उनको ये नहीं पता होता उनको करना क्या है जाना कहाँ है, 5 मिनट 10 मिनट इंसान ज़ाया कर देता है, खुसूसन छुट्टी वाले दिन ये कैफियत कभी कभी इंसान पे तारी होती है कि वो इस शशपंच में होता है। शशपंच का मतलब है हाँ 5 और 6 के दरमियान, शशपंच मतलब है यानी क्या करूँ मैं, शशपंच लफ्जी लिहाज से कह रहा हूँ बिटवीन 5 और 6 करना क्या है कि उठूँ नहीं उठूँ उठूँ नहीं उठूँ, अभी तो 7:30 अभी तो 8 अभी तो 9 हुए। ज़िंदगी जेहद देगी आपको, ज़िंदगी जेहद देगी यानी ज़िंदगी आपको, अगर आपने प्लानिंग की ज़िंदगी आपको जेहद देगी, आपको डायरेक्शन देगी कि यहाँ जाओ ये करो ये सोचो। दो आपने जो ख्वाब देखे हैं आपके जो ड्रीम्स हैं सही उसकी तामीर और तबीर को करीब तर करेगी। बहुत सारे काम आपने सोचे होते हैं लेकिन सब आप अमली जामा नहीं पहना सकते सबको, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको आप अमली जामा पहना दे आपके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि आप अमल कर रहे हैं आप सोच रहे होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके ख्वाबों को हकीकी ताबीर अता करेगी। तीन आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में आएगा, वक्त आपको नहीं चलाएगा, टीवी आपको नहीं चलाएगा, दोस्त आपको नहीं चलाएगा, नाश्ता आपको नहीं उठाएगा, आप होंगे कि इन तमाम कामों को मुनज़्ज़म कर रहे होंगे। आपने देखा होगा अक्सर एक किस्म की क्लिप आती है, एक बंदा बैठा काम कर रहा है उसने ऐसे हाथ मारा तो एक मशीन उठी, उसने जो है वो चूल्हा जला दिया, चूल्हे ने जो है वो चाय पका दी, चाय ने जो है वो केतली जो केतली से चाय कप में डाल दी, कप आया उसने यूं फैला दिया। इस किस्म की मूवी रहती रहती देखी होंगी, इस शख्स का कोई अख्तियार नहीं है। फिर जो है उसने मसलन कुछ और काम किया तो वो उधर से जो है वो सैंडविच उठा, सैंडविच आया, वो जो पेंडुलम की तरह आता है वो एक बाइट लेता है फिर चला जाता है, फिर वो एक स्टिप लेता है, वो अपना काम कर रहा है, सारे काम जो है वो मशीन कर रही है। देखा है नहीं देखा, इस किस्म के क्लिप्स आते रहते हैं और देखने में आता है यार बड़ा इसने बड़ा खूबसूरत काम किया, इतना इतना यानी फोकस काम किया इसने कि हर चीज़ एक्यूरेट है कोई चीज़, और सब सादी सादी चीज़ें होती हैं, ये कोई एक्सपर्ट नहीं है, उसने सिर्फ मैनेज किया इन चीज़ों को, उसने टाइम मैनेज किया है कि हर चीज़ एक्यूरेट अपने काम पे अंजाम पाए, मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये गेंद यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से उछलेगी, यहाँ से मसलन फला होगा, फला काम होगा, चूल्हा जल जाएगा, चाय आ जाएगी और सैंडविच तैयार हो जाएगा, उसने टाइम मैनेज किया है। हम देख के खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, बड़ा यार ओ बाबे बड़ा जबरदस्त होई होई यार क्या टाइम, ये तुम्हें बताने के लिए था, तुम्हें समझाने के लिए था कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करो, इसकी ज़िंदगी ये अगर इंसान ऐसे ज़िंदगी गुजारे ये पस्त इन हैवान की मानंद है। उलाए का कलाना मुलहम अव्वल, जिसके पास मैनेजमेंट नहीं है ना, जिसकी आंखें वो ना देखें जो खुदा देखना चाहता है, जिसकी जबान वो ना बोले जो खुदा बुलवाना चाहता है, जिसके कान वो ना सुने, लहुम आयुनुन ला युसुनुन बिहा वलहुम आदानुन ला यस्मउन बिहा वलहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा उलाइक कलनाम, तो ऐसा इंसान हैवानात से भी पस्त है, जिसके पास मैनेजमेंट ना हो अपनी आंखों के लिए, अपने कानों के लिए, अपनी जबान के लिए, अपने फिक्र के लिए। तो जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में आएगा। तीन, इंतहाई पीस ऑफ माइंड के साथ आप हर काम करेंगे। एक बात होता है, आप काम कर रहे होते हैं, जहन में एक जना वो क्या होता है, हलचल मची होती है। हलचल किसे कहते हैं, घी का कनस्तर है 5-10 किलो वाला, ठीक है, उसमें चंद ये रोड़े और पत्थर डाल दें और जोर जोर से ना गड़ 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 आवाज आएगी। कभी क्रैश होते देखा बड़े पत्थरों को जो तोड़ा जाता है, कैसी आवाज आती है, पहाड़ी इलाकों में आप गए होंगे तो देखा होगा, वो हलचल मची होती बाज़ोका जहन में इंसान के। जब आपके पास पीस नहीं है, आराम और सुकून नहीं है ना, करना है भागना है। कभी होता है ना, कभी देर हो गई है और कोई टीड़ा कसम का उस्ताद क्लास में और आपने जो है ना वो टाइम पे पहुंचना है, भागा चला जा रहा जल्दी जल्दी, कोई चीज़ भूल गया, कोई ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई, रात में आमादा नहीं किया, तैयार नहीं किया, ऐसे ही होता है। जैसे अभी मैं लेट हो गया था, जल्दी जल्दी भागो, फिर एक चीज़ भूल गया, फिर चीज़ उठाई, ऐसे होता है इंसान। पीस ऑफ माइंड ये कब होगा, ये उस वक्त होगा जब प्लानिंग होगी आपके पास, हर चीज़ पहले से तैयार होगी। लोग कहेंगे ये मम्मी डैडी वाला बच्चा है, कुछ लोग होते हैं क्लास में आपके रूममेट आपके हॉस्टल में, उनका मम्मी डैडी वाला समझ रहे होते हैं, मम्मी डैडी वाला, यानी हर चीज़ तैयार, ओके, रेडी, ऑन टाइम। वो बहुत जीनियस होता है, वो मेरी और सोचो काहिल नहीं होता, कहाँ है, कहाँ है, क्यों है, किधर है, वो पहले से तैयार करके रखता है। तीसरा क्या है, पांचवा नुक्ता क्या है, यानी हर कदम उसका ना पता लगा होता है। पांचवा नुक्ता क्या है, हदफ से हम अहम होते। अगर आप फैयादी साहब क्यों हंस रहे हैं, हमें भी हंसा दें, अगर कोई ऐसी बात है तो हमें बता दें, हम भी हंसे हो, थोड़ी सी देर और है। हदफ से हम अहम, अगर आप प्लान करेंगे तो आप अपने आप को हदफ से हम आहंग पाएंगे, लेकिन अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो एक कदम आपका राइट पे जा रहा होगा, एक कदम लेफ्ट पे जा रहा होगा, कभी लड़खड़ा रहे होंगे, कभी भी आप सही रास्ते पर कदम नहीं उठाएंगे। छठा नुक्ता क्या है, आराम और सुकून था चौथा। छठा नुक्ता क्या है, शौक रगबत वलवला आपको देगा। वलवला क्या होता है, पानी उबलता है ना, ऐसी आवाज आ रही होती है, ऐसी आती है ना, ये पानी जो है जमीन से उबल रहा तो उसकी आवाज भी इतनी शीरीन होती है। जो हजरत देही इलाकों में रहते हैं वो इस चीज को देखते हैं, आवाज आ रही होती है, ये बुलबुले की आवाज है। यानी ये शौक और ये बलबला कभी आपको मुर्दा नहीं होने देगा, सिर्फ बुलबुले की आवाज निकालने से कोई कामयाब नहीं होगा। हाँ, वो बैठ के करना शुरू करते हैं आप, नहीं बाबा आप जो है वो बुलबुले की आवाज निकालने के लिए नहीं, प्लान करने के लिए पैदा हुआ है। तो शौक और वलवला आपको देगा। फैयादी साहब क्या बात है, आपकी जगह तब्दील करनी पड़ेगी मुझे लगता है, मुर्दगी से निजात देगा। बहुत से लोग होते काम कर रहे थे लेकिन दिल मुर्दा होते हैं उनके, दिलों में रमक नहीं होती जिंदगी की, दिल में चार नहीं होता, लज्जत नहीं होती, अट्रैक्शन नहीं होती, मुर्दा होते कर रहे हैं। ये तो कुछ लोग हैं वो आए हैं यहाँ पर बस बैठ के सुनना है, ये मुर्दगी है। या मसलन कोई काम करें, ये मुर्दगी है, जिसमें शौक और रगबत ना वो मुर्दगी है। और मुर्दया जिसमें से जिंदा बच्चे, जिंदा फिक्र और जिंदा सोच कभी पैदा नहीं होगी। मुर्दा फिक्र हो, मुर्दा दिल हो, मुर्दा जिसम हो, ऊँग आ रही हो, नींद आ रही हो, आधे यूँ लेटे हुए हैं, आधे यूँ लेटे हुए जी, ये मुर्दगी की अलामत है। और मुर्दा औरत से कभी जिंदा बच्चा पैदा नहीं होगा। मुर्दा जिस्म से, मुर्दा फिक्र से, मुर्दा सोच से कभी जिंदा सोच पैदा नहीं हो सकती। और सातवां नुक्ता क्या है,
कि टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग आपको जो नेमतें मौजूद हैं उसकी शुक्रगुजारी का जज्बा आप में पैदा करेगा। जो है उसको अपने कंट्रोल में रखो, जो नहीं उसे पाने की फिक्र करो। मेरे पास कहते जो मेरे पास है उसको तो रीच देखता ही नहीं, मैं उसको ले रहा था। वो उस वक्त मिलेगा कि जब ये जो स्टेप्स बने हैं सीढ़ी के, तुम इस पे चलोगे, मुझे वहां जाना है, वो लेना है, वहां पहुंचना है, उसे हाथ में लेना है, वो ठीक है। वो कब होगा कि जब तुम इन स्टेप्स पे कदम रखोगे। जो मौजूद है उसके तो शुक्रगुजार बनो ना, पहले तुम वो देख उधर रहे हो और तुमने सीढ़ी पे कदम रखा धड़ाम से गिर पड़े। होता है अक्सर, अक्सर आपने देखा बहुत तेजी से चल रहे हो या किसी काम में मसरूफ हो तो अचानक से जीना खत्म हो जाता है और आप इसी उम्मीद से कि जीना आएगा पैर रखते हैं और आप डिसबैलेंस हो जाते हैं। इस किस्म के क्लिप्स अक्सर आते हैं कि बंदा जो है वो बातें करते करते जा रहा है, मोबाइल में इतना सरगर्म, कभी टकरा गया, कभी पूल में गिर गया, कभी कुछ हो गया। नॉर्मल अंदाज़े क्या होता है, जब आप किसी काम में मुनहमक होते हैं ना, डूबे हुए होते हैं और आप ये समझ रहे होते हैं कि अब स्टेप आएगा, वो स्टेप खत्म हो जाओ, अब जीना आ गया, फ्लैट जमीन आ गया, आप जोर से कदम रखते हैं ना, आप डिसबैलेंस हो जाते हैं। ये सीढ़ी उतर रहे हैं और आप इस ख्याल में कि अभी एक स्टेप और बाकी है, अभी एक सीढ़ी और बाकी, आप कदम रखते लेंगे फ्लैट जमीन होती है, आप डिसबैलेंस हो जाते हैं। क्यों होता है ये इसलिए होता है कि जो नेमत आपके पास है वो नेमत के कदरदान नहीं है। मुझे वो चाहिए तो ये जो चीज मौजूद है पहले इसको सही यूटिलाइज करो, यूज करो, तब जाके वो मिलेगी। और फिर ऑटोमेटिकली मुनज्जम जिंदगी आपकी खिदमत करेगी, यानी रिदम में आ जाएगी, रिदम में आ जाएगी जिंदगी, हर चीज अपने काम पर अंजाम पाने लगेगी। उसकी बहुत ही आसान मिसाल मैं दो आपको, मोटरसाइकिल की चेन इस पॉकेट, चेन पॉकेट मालूम है ना किसे कहते हैं, चेन पॉकेट वो होता है जिसमें चेन घूमती है, उसमें गरारियां पड़ी होती हैं छोटी छोटी सी, और उसमें आके वो होल जो है आपकी चेन को आके फंस जाता है। एक में फंस जाएगा ऑटोमेटिकली सब में फंसेगा, एक मिस होगा ऑटोमेटिकली दूसरे मिस हो जाएंगे, चेन उतर जाएगी, फिर आप उसे हाथ चढ़ाकर उसको घुमाते हैं फिर वो चढ़ता है। जिंदगी ऑटोमेटिकली इसी तरीके से चेन और चेन पॉकेट के तरह आपकी मदद करने लगी। फिर आपको धक्का लगाने की जरूरत नहीं मोटरसाइकिल की, एक दफा आपने फिट कर दिया, टाइट कर दिया, चलेगी। हो उसके बाद क्या है, मुनज्जम जिंदगी आपको पावर देती है, ताकत देती है। और दसवां क्या है, आजादी देती है, आजाद मनीषी की जिंदगी देती है, आजाद सोच और आजाद अमल आपको अता करती है। इसमें वो डिटेल है, मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है कि अपने मौजूदा नेमतों को गिनना है। मौजूदा नेमतें क्या हैं आपके पास, कितना वक्त है आपके पास, क्या क्या चीजें हैं आपके पास। दो, आपके मौजूदा इम्कानात क्या हैं, मेरे पास इतना टाइम है मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जो हैं वो आपके पास 3 मिनट हैं 4 मिनट हैं और आप बहुत बड़ा काम करने लग जाएं, आपकी प्लानिंग सही नहीं है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने आप को मैनेज नहीं किया, आप नाकस इंसान है, फेल हो जाएंगे आप। इसीलिए आप देखते हैं कि जिनकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं वो 3 घंटा पहले पहुँचते हैं, जिनकी लोकल फ्लाइट्स होती हैं वो 1 घंटा पहले पहुँचते हैं। अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। अगर आप अपने इम्कानात को देखना शुरू कर दें, अपने वसाइल को और मसाइल को, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। तीसरा नुक्ता जो आपकी मदद करेगा प्लानिंग में, छोटे छोटे कामों का अंजाम दें। 10 मिनट में, 5 मिनट में मैं ये काम करूँगा, करके देखें आप। 5 मिनट का एक वक्त मुकर्रर करें, इस 5 मिनट में मैंने ये काम करना है। मसलन मैंने 5 मिनट में 2 रकअत इजाफी नमाज शुक्राने की पढ़नी है और 5 मिनट में मैंने एक जोड़ा भी इस्तरी करना है अपना, ये करके देखें आप। ऐसे कई का जब आप करेंगे तो आपके अंदर एक मलका पैदा होगा। मलका क्या है, कमांड यानी कंट्रोल। कई मरतबा जब आप ये काम करेंगे तो आप में ये मलका पैदा होगा।
दूसरा ये कि इजाफी सोच के दरवाजे बंद कर दें, दिल धड़क रहा है, खौफ आ रहा है, क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, याद नहीं हो रहा है, नहीं। जब आप प्लानिंग करें तो जितनी भी इजाफी खिड़कियाँ सब बंद कर दें। अभी आपने सफाई की है ना, तो क्या करते हैं, दरवाजे खिड़की बंद ताकि मिट्टी ना आए, यही करते हैं ना, मिट्टी ना आए। तो इजाफी दरवाजे बंद कर दें प्लानिंग करने के बाद। शैतान आएगा, दोस्त आएगा, मशगूलियत आएंगी, लज्जतें आएंगी, मोबाइल आएगा, कॉल्स आएंगी, नहीं। आपने जो काम करना है वो काम करेंगे आप। चौथा काम आपने ये करना है कि अपने नेगेटिव पॉइंट्स को तलाश करना है। माजरत के साथ, जब इंसान के कपड़े पे कोई धब्बा लग जाता है तो अच्छी तरह साफ करता है, फिर देखता है साफ हुआ कि नहीं हुआ, कपड़े सही करता है, कपड़े सही तरह प्रेस हुए नहीं हुए। उसी तरह अपनी ज़ात को दर हकीकत देखें कि आपने नेगेटिव नुकात क्या हैं, आप में मनफी नुकात क्या हैं, आपके वो नुकात जो आपकी हिम्मत को कम कर रहे हैं। उसकी मिसाल ऐसा ही है जैसे आप ने कोई चीज़ बनाई है, कोई चीज़ रखी है, आप उसे चेक करते हैं, यार ये सही तरह रखी है, ये किताब मसलन इसको शेल्फ पर रखा है, अब ये गिर रही है, क्यों गिर रही है, ये टेढ़ी है, भाई इसको सीधा करो ना। या कोई चीज़ जो है शेल्फ से बाहर नहीं, शेल्फ यहाँ तक है, ये चीज़ बाहर निकली, क्यों निकल रही है, इसको इस तरह रख दो, इसको खड़ा करके रख दो, ज़्यादा कम जगह घेरेगी। ये जो चीज़ गिर रही है, अनबैलेंस हो रही है, बाहर निकल रही है, ये सब क्या है? यही चीज़ इंसान के साथ होती है। अपने आपने निगेटिव नुकात को नहीं पहचाना ना मनफी नुकात को, जो आपकी सोच को अंदर से खा रहे होते हैं, जो आपके अमल को, इकदामात को गैर मजबूत बना रहे होते हैं, उनकी शिनाख्त ज़रूरी है। अगर आपने अपनी मनफी नुकात को नहीं पहचाना तो आप जितनी भी प्लानिंग करेंगे ना वो अंदर से उसे खा जाएंगे, वो अंदर से उसे नाबूद कर देंगे, वो अंदर से उसे खोखला कर देंगे। दीमक होती है, दीमक देखिए ना, अंदर से खा जाती है, ऊपर से बड़ा लग रहा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपने उसमें उंगली मारी, उंगली अंदर चली जाएगी लकड़ी के अंदर, अरे ये क्या है, दीमक खा गई, खोखला कर दिया। इंसान की मनफी नुकात, मनफी सिफात, मनफी सोच उसकी मजबूत इमारत कुव्वत इरादे को अंदर से खोखला कर देती है। और पांचवा नुक्ता यह है कि अपने लिए फ्री टाइम जरूर रखें। गेम होना चाहिए, कोई गुफ्तगू होनी चाहिए, कोई गेम ज़रूर रखें। आधा घंटा गेम आपकी ज़िंदगी में, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिसमें जो है ना वो आप एक्टिव रहें, ये बहुत ज़रूरी है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी ही आपकी अकली सलाहियत एक्टिव रहेगी। बहुत से लोग होते हैं नहीं नहीं हराम है, नहीं खेलो, ये नहीं करो, ढंगा हो रहा है, होते हैं बहुत मुकद्दस इमाम, इमाम खुनी ज़्यादा मुकद्दस बन रहे होते हैं, इमाम खुनी वर्जिश कर रहे होते हैं, ये वर्जिश नहीं कर रहे हैं। नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह, साहब वक्त ज़ाया होता है खेलने कूदने में नहीं। अच्छा खेल कूद, तफरी, पिकनिक, वर्जिश, अच्छा जवान की ज़रूरत है, ले यरता वया लाभ, ताकि ये घूमे फिरे, वया लाभ खेले। हज़रत यूसुफ़ के भाइयों ने कहा था ना, अर्जिल हमाना गदन यरता वया लाभ, खेले और आराम तो सही। बच्चा बचपन में जितना खेलेगा उतना ही शार्प माइंड होगा, जो बच्चा बचपन में चार दफा गिरेगा ना उतना ही शार्प माइंड होगा, वो जवाने में नहीं गिरेगा। जिस बच्चे को मम्मी बेटी, अरे मेरे बेटा नहीं गिरे, अरे मुन्ना गिर जाएगा, ये बच्चा बड़े होके 10 दफा गिरेगा। जो बच्चा 4 चोटे खाएगा ना वो बड़े होके मजबूत इंसान बनेगा। तुस्तहब आरामत सभी लियकूना हलीमन फी किबरही, जो बचपन में खेलेगा वो बड़ा होके हलीम और बुर्दबार और शार्प माइंड बनेगा, शादी नहीं बनेगा। ये जो आप जब आप खेलेंगे ना, ये आपकी अफसुर्दगी निकालेगा, पसीने में डूबेंगे, जिस्म थकेगा, सांस फूलेगी, दिल की धड़कन तेज होगी, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, दौरान खून तेजी से बढ़े, आपकी सर्कुलेट करेगा बढ़े, ये आपको चार्ज करेगा। याद रखिएगा फुर्सत के लम्हात निकालें। तो प्लानिंग क्या है, बस आपके तहत तमाम गुरु वक्त पूरा हो गया कि प्लानिंग ये है कि आप अपने लिए नहीं, बिल्कुल 1 घंटा हुआ है, आपने टाइम लेट दिया था। तो ये 4-5 काम करें आप, और वही एक काम जो मैंने कहा कि पेपर वर्क, अगर आप पेपर वर्क नहीं करेंगे जो लेट भी आ रहे हैं ना, वो भी मेरी नज़रों में सामने है, सही है हाँ, लिहाजा बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। खैर, तो पेपर वर्क ज़रूर करें, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हकीकी माना में जो कुछ हमने कहा और सुना उसे अपनी रज़ा का ज़रिया करार दे। अल्लाह ताला हमें हकी माना में ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने और इसके फ़वाइद को हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए।